साहित्य का गतिशील चिंतन। पिछले 150 वर्षों से भारतीय चिंतन में कला, संस्कृति और साहित्य मूल्यों को लेकर गंभीर वैचारिक मंथन चल रहा है और इस क्रम में परंपरा का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन के अनेक दौर आते रहे हैं। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और विश्व इतिहास के परिवर्तित मूल्यों के इस प्रक्रिया को और तेज किया गया है। आधुनिक साहित्य के कला मूल्यों और विचारधारात्मक अंतर्विरोधों से गुजरते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी परंपरा के भीतर से इन सवालों को सुलझाने का प्रयास किया है। जीवन की गंभीरता समझे जाने वाले प्रश्नों का साहित्य में समाधान खोजना एक आधुनिक प्रवृत्ति है और इसकी अपेक्षा में हजारीप्रसाद द्विवेदी के समय समय पर लिखे गए निबंधों का सिलसिलेवार अध्ययन किया जाए तो लगेगा कि ये निबंध भारतीय परम्परा के मूल्यांकन के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, कुटज, देवदारू, आम फिर बौरा गए, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, जिंदगी और मौत के दस्तावेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्राचीन साहित्य, सभ्यता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति और साहित्य, संस्कृतियों का संगम, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, हिंदू संस्कृति के अध्ययन में उपादान, विश्व को क्षमा नहीं किया गया, प्रायश्चित की घड़ी, धार्मिक विप्लव और शास्त्र, पंडितों की पंचायत, जबकि दिमाग खाली है, आदि ऐसे निबंध हैं जिनके द्वारा उन्होंने सांस्कृतिक परंपरा के पुनर्मूल्यांकन और इतिहास की सही दिशा को समझने का प्रयास किया है। इनमें द्विवेदी जी ने मानव जाति के संघर्ष, विकास और उसकी संरक्षणशील परंपराओं का इतिहास प्रस्तुत करते हुए अपनी जटिल एवं संश्लिष्ट संस्कृति की अवधारणा का विकास किया है, जिससे उनके संतुलित दृष्टि का परिचय मिलता है। इसी प्रकार साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य कान या कदम, साहित्य के नए मूल्य, आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, समीक्षा में संतुलन का प्रश्न, साहित्य में व्यष्टि और समष्टि, साहित्य में संप्रेषणीयता, साहित्यकारों का दायित्व, आलोचना का स्वतंत्र मान, परंपरा और आधुनिकता आदि ऐसे साहित्यिक निबंध हैं जिनमें अनेक आलोचना मूल्यों, विचारधारात्मक संतुलन, नई रचना की खोज और पांडित्यपूर्ण प्रतिभा के लोकोन्मुखी विकास का परिचय मिलता है। उद्देश्य एक ही है, साहित्य को जीवन और समाज से जोड़कर मनुष्य को उसकी संपूर्णता में पहचानना तथा समाज सापेक्षिक मानवतावादी मूल्यों की स्थापना। इतिहास, पुराण, प्राचीन साहित्य, धर्म, दर्शन के रचनात्मक व्याख्याता तथा राष्ट्रीय चेतना को विश्व मानवतावाद के धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले आलोचक हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक नवजागरण और प्रगतिशील आंदोलन की सही दिशा को पहचान कर मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य घोषित करते हुए लिखा है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तो दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मनुष्य के साहित्य का लक्ष्य है। यह मनुष्य साहित्य का लक्ष्य इसलिए है कि द्विवेदी जी उसे ही शाश्वत और सार्वभौम मानते हैं। परंपराएं लुप्त हो सकती हैं, साहित्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा शक्ति अजय है। इतिहास के प्रभाव में मनुष्य थका है, हारा है, पराजित हुआ है, पर नष्ट कभी नहीं हुआ। साहित्य उस संघर्षशील मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति को जानने का साधन है। इसलिए मनुष्य की इच्छा, आकांक्षा, जय, पराजय, शक्ति और दुर्बलता की संपूर्णता में उसे पहचानना तथा उसकी हीनता, दुर्बलता, प्रमुखापेक्षिता को आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता से तेजोदीप्त करना ही साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी के साहित्य का लक्ष्य जाति धर्म निर्विशेष सामान्य मनुष्य है, जो सुविधाभोगी समाज के अवसरवादी स्वार्थों के चलते वर्ग विभाजित समाज में शोषण, दमन और अपेक्षा से अभिशप्त है। उसे शाप मुक्त कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना इस सत्यकार का दायित्व है। आज के इस जटिल सामाजिक संरचना में इस दायित्व का निर्वाह करना और भी कठिन हो रहा है। कोई भी साहित्य मूल्यवान और महान तभी है जब वह मनुष्य को सचेतन मनुष्य बनाए, मनुष्य अपने साहित्य और परंपरा को सही ढंग से जान और समझ सके तथा जीने की कला सीख सके। आज के साहित्यकार के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है, जिसे वह कल्पना विलास से नहीं बल्कि अपने वर्तमान सामाजिक यथार्थ की चेतना से ही सुलझा जा सकता है। इसलिए द्विवेदी जी का मानना है कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। लेकिन वे अति यथार्थवाद के नापद साहित्य में जुगुप्सा वृत्ति के मनोरोग का प्रतिकार करते हुए मनुष्य के सामाजिक हित को ही अच्छे साहित्य की कसौटी मानते हैं और साहित्य की सामाजिक उपयोगिता पर बल देते हुए उसकी सदस्यता को निर्दिष्ट करते हैं। इसी आधार पर वे लोक जीवन से जुड़े भक्ति काव्य को महाभारत, रामायण और पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य की लोकोन्मुखता से जोड़ते हुए उसकी सामाजिक उपयोगिता और मानवीयता को महत्व देते हैं तथा उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य तथा उत्तरकालीन हिंदी रीति काव्य को उन गुणों के अभाव में ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति और स्तब्ध चेतना का काव्य मानते हैं। इस प्रकार जीवन में अविच्छिन्न साहित्य द्विवेदी जी के लिए महत्वहीन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को तैयार माल न मानकर उसे लोक की अपेक्षा में उत्पादकता की दृष्टि से देखते हैं तथा मनुष्य के बनते बिगड़ते इतिहास के आलोक में परखते हैं। उनका कहना है कि इनपुट कामा, हम लोग नेतृत्व के ग्रंथ न पढ़ते तो वो शुभ बात नहीं है, परंतु जब हम देखते हैं कि ग्रंथ पढ़ने के कारण हमारे घरों के निकट जो चमार, धीवर, कोयरी, कुम्हार लोग रहते हैं उनके पूरे परिचय पाने के लिए हमारे हृदय में जरा भी उत्सुकता उत्पन्न नहीं होती, तब अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि पुस्तकों के संबंध में हमें कितना अंधविश्वास हो गया है, पुस्तकों को हम कितना बड़ा मत समझते हैं और पुस्तकें वस्तुतः जिनकी छाया है उनको कितना तुच्छ मानते हैं। इनपुट कामा बंद। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। साहित्य को भोक्तावादी दृष्टि से देखने वालों से द्विवेदी जी कितने भिन्न है और मनुष्य के बौद्धिक सहानुभूति के आधार पर भोगे हुए यथार्थ का डंका पीटने वाले मनुष्यता की व्यवहारिक पहचान से कितनी दूर है यह बताने की आवश्यकता नहीं। द्विवेदी समाज को, मनुष्य को और उसके जीवन को पुरातत्ववेत्ता की पैनी दृष्टि से देखते हैं और अपने साहित्य तथा इतिहास के समग्र जीवन से ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि हमारे देश का वास्तविक इतिहास बड़े बड़े ग्रंथों से ही नहीं बल्कि लोक परंपराओं, लोक तत्वों और लोक चेतना के जीवित स्रोत के आधार पर ही समझा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे सर्जक आलोचक हैं जो साहित्य को साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं मानते और इस साधना को उन्होंने अपने प्राचीन साहित्य, इतिहास, पुराण, धर्म दर्शन, ज्योतिष, पुरातत्व, काव्यशास्त्र, कला विलास के गण अध्ययन तथा आधुनिक नेतृत्व विज्ञान, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि ज्ञान विज्ञान के विविध अनुशासनों के अपेक्ष में अर्जित किया है। इसलिए समाजशास्त्रीय औजारों को प्रयोग का दावा किए बिना ही भी उनकी साहित्य साधना में एक विकासवादी दृष्टि मिलती है। आगे पीछे देखकर वह वर्तमान में जीने वाले साहित्यकार हैं, इसीलिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की स्वाभाविक दिशा को पहचानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जमाना कोई पागल ऊंट नहीं है कि वह तेजी से भाग खड़ा होगा। आखिर जमाने के भागने का मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट भी नहीं है। जीवन के विभिन्न मूल्यों में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। कल जिसको मनुष्य नगण्य समझता था आज उसका दाम बढ़ गया है। कल जिसका दाम बहुत अधिक था आज उसे कोई पूछता नहीं। किसी जमाने का सुसंस्कृत समझा जाने वाला व्यक्ति वंश विशेष में उत्पन्न होकर दूसरे व्यक्ति को छू लेने पर गंगा स्नान करना आवश्यक समझा जाता था, परंतु आज ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति असंस्कृत माना जाने लगा है। इनवट कामाबंद। साहित्य की साधना। इन बदलते हुए सामाजिक मूल्य और उसकी भविष्योन्मुखी दिशा की अपेक्षा में ही वे अपने साहित्य का मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पुराने मूल्यों के विघटन और नए मूल्यों की स्वीकृति का द्वंद्वात्मक विवेक उनके साहित्य साधना का आधार है। आचार्य द्विवेदी के चिंतन का मुख्य आयाम समाजवादी मानवतावाद है। उनके अनुसार मानवतावाद के दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला, मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों में विश्वास तथा दूसरा, मनुष्य के मर्द जीवन को किसी प्रकार के पाप फल भोगने का परिणाम न समझकर उसे इसी दुनिया में दुख शोक से बचाना और दुनिया में सुख समृद्धि से युक्त करना। आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं। इसी आधार पर द्विवेदी जी भक्ति काव्य की उस योग सापेक्षता जो स्वीकार करने के बावजूद उसमें आधुनिकता बोध का अभाव पाते हैं क्योंकि उसकी चेतना पारलौकिक है और उससे उसमें सचेत परिवर्तन इच्छा नहीं दिखाई पड़ती। इस प्रकार मध्यकालीन बोध से आधुनिकता बोध को अलगाते हुए वे आधुनिक साहित्य की रचनाशीलता को सचेत परिवर्तन इच्छा का परिणाम मानते हैं और मनुष्य की सामाजिक मुक्ति को उसका लक्ष्य घोषित करते हैं। इनवर्ट कामा, सब प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषणों से मनुष्य को मुक्त किया जाए क्योंकि मनुष्य के जीवन का बड़ा मूल्य है। मनुष्य का अखंड विश्वास इसका प्रधान संबल है। इनवर्ट कामा, यह द्विवेदी जी का नवमानवतावाद या समाजवादी मानवतावाद है, किंतु यही उनके चित्त की सीमा नहीं है। औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण पूंजीवादी समाज की जटिल संरचना में मनुष्य को सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की और दयनीय हो उठी है। इससे द्विवेदी जी अच्छी तरह परिचित है। साहित्य का मर्म शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा है, इनपुट कामा, यंत्रों के आविष्कार ने जहाँ जीवन की ऊपरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर उत्पादन की व्यवस्था की है, वहाँ उससे वितरण और उपयोग की उतनी ही अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकी है, क्योंकि उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में चले गए हैं। उनके हथियाने में जिस बौद्धिक कौशल की आवश्यकता है वह मनुष्य अनायास उचित अवसर पाने पर पा जाता है, परंतु उससे उत्पादित सामग्री को सब तक पहुंचाकर सबके साथ मिलकर भोगने में जो मानसिक औदार्य और बौद्धिक निर्लिप्तता आवश्यक है वह उतनी आसानी से नहीं मिलती। इनोटिकमाबन विचार प्रवाह। जाहिर है कि आचार्य द्विवेदी द्वंद्वात्म भौतिकवादी मुद्रा धारण किए बिना ही अपने भौतिक भाववादी धरातल से यह लक्षित करते हैं कि समाज में पूंजी का असमान वितरण ही आर्थिक विषमता का कारण है और संपत्ति पर कुछ थोड़े से लोगों का एकाधिपत्य छीने झपट की एक बर्बर मनोवृत्ति है। उत्पादित सामग्री को सब तक पहुंचाकर सबके साथ मिलकर भोगने की दूसरी मनोवृत्ति में आर्थिक समानता की बात बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर है कि वह उतनी आसानी से नहीं मिलती और उनका ख्याल है कि उसे मानसिक औदार्य और बौद्धिक निर्लिप्तता से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन वे प्रगतिशील चिंतन के उपलब्धियों और उसके सामाजिक प्रभाव से भी खबर नहीं है। वह स्पष्ट रूप से लक्षित करते हैं कि इस नई अवस्था में संसार के सामने सैकड़ों समस्याएं उपस्थित कर दी हैं। घिनौने युद्ध और भयंकर अकाल और प्रकृति के कोप से नहीं होते, मनुष्य की दुर्ललित वासनाओं के कारण हो रहे हैं। जीवन एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रकार से झकझोर दिया गया है कि पुराने संचित संस्कार बुरी तरह झड़ गए हैं और एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए हैं। साहित्य का मर्म। कौन कह सकता है कि शास्त्र संबंधी अध्ययन और परंपरा के पुनर्मूल्यांकन के प्रयास में उन्होंने अपने ढंग से इन संस्कारों को तोड़ने के लिए हथौड़े की चोट नहीं की। उनके विप्लव और शास्त्र प्रायश्चित की घड़ी, पंडितों की पंचायत, जबकि दिमाग खाली है, घर जोड़ने की माया आदि निबंध इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। उनका यह कथन प्रगतिशील चिंतन के सामाजिक प्रभाव को ही नहीं रेखांकित करता बल्कि गांधीवादी हृदय परिवर्तन के भाववाद का भी प्रत्याख्यान करता है। प्रायश्चित की घड़ी शीर्षक निबंध में उन्होंने केवल सुधारवादी आंदोलन और समाज सुधार को खिल्ली उड़ाकर पुनरुत्थानवाद का विरोध किया बल्कि लोक जागरण में जनशक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए दृढ़ता के साथ घोषित किया है कि निस्संदेह जागृति धर्म और समाज सुधार का सहारा नहीं होगी, वह आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करेगी। नोटरकामन अशोक के फूल। धार्मिक सुधार या भावनात्मक एकता के नारों से समाज में आर्थिक विषमता की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता, इसलिए द्विवेदी जी बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं। नोटरकामा अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है, सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मानव की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इनोटेड कमन आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं। सोचने की बात है कि आचार्य द्विवेदी के चिंतन का यह आयाम प्रगतिवादी चिंतन के से कितना और किस अर्थ में भिन्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन गतिशीलता को भाववाद या मानवतावाद के खाते में खतिया कर उनसे छुट्टी पा लेने का प्रयास निश्चय ही एक दृष्टि का परिचायक है। मानवतावाद हो या प्रगतिवाद, किसी भी प्रकार के विचार पद्धति को वे संतुलित विवेक से देखने के पक्षधर हैं। मानवीय मूल्य और सामाजिक मुक्ति की कसौटी पर जांचने परखने के बाद ही बिना कोई निर्णय लादे अपनी बात रखते हैं। पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीयता के प्रगतिशील पक्ष को स्वीकार करने के साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीयता और उसके निष्क्रिय सामाजिक तथा विकृत मानवतावाद का स्पष्ट प्रतिवाद करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इनोटेड कामा हमारे देश के भी नए साहित्य के नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों और अधःपतितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और राष्ट्रीयता भी आई। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ व्यक्ति मानव की महिमा पर अखंड विश्वास से एक ही राष्ट्र में सुविधा भोगी व्यक्ति मानवों को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता के देवी युवावस्था के देहली में पहुंचकर ऐसे ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को हिले डूबती है। आधुनिक साहित्य नई मान्यता है। इसी के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप एक और राष्ट्रीयता ने सिर उठाया तो दूसरी ओर मानवतावाद के विकृत चिंतन ने उस विकृत मानवतावाद को जन्म दिया जिसके अनुसार मनुष्य की भी उत्तम और निकृष्ट दो श्रेणियां हैं। आचार्य द्विवेदी स्पष्टतः यह स्वीकार करते हैं कि सारे विश्व में मनुष्य की शक्ति बढ़ी है और साम्राज्यवादी शक्तियां हतवीर्य हुई हैं। उस विश्व इतिहास को दिशा को पहचानते हुए द्विवेदी निष्क्रिय भावनात्मकता के आधार पर भारत माता का जयनाद करने वाली भाव प्रवृत्ति को गलत मानते हैं और सशस्त्र क्रांति को भी हवा में मुक्का ताने वाली हरकत के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में वही साहित्य महान है जो समाज पर अच्छा प्रभाव डाले। इन्होंने कामा समुची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से वंचित न हो, इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होना चाहिए। नोटेड कामाबंद साहित्यकारों का दायित्व। वे समाज पर साहित्य के बुरे प्रभाव से अच्छी तरह परिचित है, इस पर विचार करते उन्होंने आगाह किया है कि नोटेड कामा संसार के कई देशों ने अपनी जातीय श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से साहित्य लिखा है और कोमल मस्तिष्क वाले युवकों की बुद्धि विषाक्त बना दी है, उसका परिणाम संसार को भोगना पड़ेगा। इंटरव्यू का बाद इसलिए द्विवेदी जी का कहना है कि साहित्यकार जब लिखने लगे तो उसके सामने केवल साहित्य के नियम और रूढ़ियाँ नहीं बल्कि उसकी दृष्टि मनुष्य के कल्याण की ओर भी होनी चाहिए, लेकिन यह कल्याणवाद उसके लेखन के ऊपर ऊपर उतराता ही न रहे, उस लेखन के प्रवाह में गुला मेला होना चाहिए। इसलिए वे अनेक बार घोषित करते हैं कि वह शास्त्र, रस, ग्रंथ, कला, राजनीति, समाज सुधार और पूजा पाठ आदि निरर्थक हैं यदि उनसे मनुष्य का अत्यंत कल्याण न होता हो। इसी तरह आधुनिक साहित्य के बारे में उनका कहना है कि यूनिटेड कामा प्रधान बात है हमारी आधुनिक समस्या है। साहित्य अगर उसके लिए उपयुक्त अध्ययन सामग्री नहीं उपस्थित करता तो वह बेकार है। यूनिटेड कामा मन प्रगतिवादी चिंतन और प्रगतिशील आंदोलन को आचार्य द्विवेदी महान आदर्शों से संचालित मानते थे, क्योंकि वह व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव की स्थापना का प्रयास करता है। आचार्य द्विवेदी ने उसे गहराई से समझने का प्रयास किया। वे लिखते हैं इनोटेड का प्रगतिवादी साहित्य मार्क्स के प्रचारित तत्व दर्शन पर आधारित है। इस मत को मानने वाला साहित्यिक रहस्यवाद में विश्वास नहीं कर सकता, प्रकृति या ईश्वर के निष्ठुर प्रयास की बात नहीं सोच सकता, भाग्यवाद के ढघोसलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मत में समाज निरंतर विकासशील संस्था है, आर्थिक विधानों के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होता है। इस मत को स्वीकार करने वाला साहित्यिक समाज की रूढ़ियों को सनातन से आया हुआ या ईश्वर की निभ्रांत आज्ञाओं पर बना हुआ और ऊंच नीच मर्यादा को परिवर्तनीय सनातन विद्या विधान नहीं मान सकता, वह समाज को बदल देने में विश्वास करता है। समीक्षा में संतुलन का प्रश्न। मार्क्सवादी दर्शन के सूत्रों को पहचानते हुए वह भी लक्षित करते हैं कि इस वर्तमान समाज व्यवस्था में पूंजीवाद एक निगेटिव या प्रतिगामी शक्ति है, क्योंकि यह असंख्य जनता के शोषण पर आधारित है। इसीलिए प्रगतिशील आंदोलन को केवल आर्थिक दृष्टि की उपज न मानकर वह लिखते हैं इनोटेड दामा इसके महान संकल्प होते शिक्षा की वृत्ति पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो केवल आर्थिक दृष्टि की उपज नहीं कही जा सकती। यह मनुष्य जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाने के जीवन दर्शन से अनुप्राणित है। इनोटेड दामा आगे अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हैं इनोटेड दामा मैं ऐसे संकल्प को जड़वादी और भौतिक कहने में हिचकिचाता हूँ। साहित्य को महान बनाने के मूल में साहित्यकार का महान संकल्प होता है, वह संकल्प इस विचार पद्धति के साथ है और अंत में उसके आध्यात्मिक विरोधी दृष्टि से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं मेरा विचार है कि अपने देश की विशाल आध्यात्मिक परंपरा मूलतः इसकी भावधारा से विरुद्ध नहीं पड़ती। यह और बात है कि इसका विनियोग सब समय ठीक रास्ते नहीं होता। मैं समझौते की दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं शुरू में ही इसका प्रत्याख्यान कर चुका हूँ। नए और पुराने विचारों का अंतर मैं जानता हूँ। इनोटेगामा बंद महान संकल्प से संचालित इस विचारधारा को द्विवेदी जी अपनी परंपरा के अनुभव की अपेक्षा में देखने की सिफारिश करते हैं। सहमति या सहमति का सवाल अपनी जगह, लेकिन मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के अंतर को द्विवेदी जी ने परंपरा और आधुनिकता शीर्षक निबंध तथा हिंदी साहित्य की भूमिका में जितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है उतनी स्पष्टता उस समय तक बहुत से प्रतिष्ठित आलोचकों में भी नहीं दिखाई पड़ती। प्रगतिवाद को लेकर आचार्य द्विवेदी किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं थे, उनके सामने उसका आदर्श स्पष्ट था। यही कारण है कि उन्होंने प्रगतिवादी आंदोलन के मूल में किन्हीं क्रमागत विचारों को नहीं बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका को ही महत्वपूर्ण माना है। ध्यान देने की बात है कि इनोटेड कमा प्रगतिवाद के आलोचकों ने प्रगतिवादी हिंदी कविता को हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास मानने से इनकार किया था। उन आलोचकों के विपरीत द्विवेदी जी ने उसे हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास माना और यह लक्ष्य करने में सफल हुए कि उसके पहले के दौर के कवि प्राय हिंदी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कवि ही हैं। अब उनमें इतना भर फर्क आ गया है कि वे वर्ग दृष्टि से तमाम चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने राष्ट्रीयता या देशभक्ति का नया मतलब लगाया था, किसान और मजदूरों को विषय बनाकर उनके पक्ष में कविताएं लिखना। आलोचना इसका कारण यह है कि आचार्य द्विवेदी अपनी परंपरा को सही ढंग से पहचानने के कारण किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक प्रवृत्ति को केवल बाह्य राजनीतिक परिस्थितियों में न देखकर उसे तत्कालीन समाज के अंदर विरोधों की उपेक्षा में देखने का प्रयास करते हैं। अपने इस प्रखर इतिहासबोध के कारण उन्होंने मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य को भारतीय साहित्य के स्वाभाविक विकास प्रक्रिया में देखने का प्रयास किया था, जबकि आलोचक उसे पारंपरिक बाह्य और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम मानते रहे थे। इसीलिए आचार्य द्विवेदी बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं इनोटेड कामा यह एक बिल्कुल गलत धारणा है कि सभी प्रगतिवादी रचनाएं मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन या प्रचार करती हैं। इनोटेड कामा बंद अशोक के फूल द्विवेदी जी उन प्रगतिवादी रचनाओं को स्वीकार करते हैं जिनमें दुनिया को अपने आदर्श के अनुरूप ढाल लेने का संकल्प हो, लेकिन ऐसी रचनाओं को वे प्रगतिवादी मानने को तैयार नहीं है जो केवल आधुनिक विचारों को हवा में से पकड़कर लिखी गई हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी रचनाओं को द्विवेदी जी चयन की मूल्य दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। प्रगतिवाद को विवेक जीव का त्यों न स्वीकार कर से आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उसके सामाजिक कल्याण के महान संकल्प से अत्यंत प्रभावित हैं और प्रगतिवादी आंदोलन का समर्थन करते हैं, किंतु लेखन के स्तर पर पार्टी के सचिव को भी आंदोलन के विकास पर घातक मानते हैं। उनके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी से जिस साहित्यकारों का संबंध है उनको पार्टी के निर्देश पर चलना पड़ता है। पार्टी का इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन के मार्ग में आना हितकर नहीं हो सकता। कई प्रगतिशील लेखक पार्टी के अंकुश को बर्दाश्त न कर सकने के कारण उससे अलग हो गए हैं। भविष्य में या तो पार्टी को अपना अंकुश उठा लेना पड़ेगा या प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों से वंचित रहना पड़ेगा। हिंदी साहित्य पार्टी प्रतिपत्ति लेखन की भविष्योन्मुखी दिशा की यह सही पहचान आज समय की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है, इस संदर्भ में डॉक्टर नंद किशोर नवल ने बहुत सही आकलन करते हुए लिखा है। ये नोटेड कामा। साहित्य के क्षेत्र में पक्षधरता का अर्थ अब पार्टी की सदस्यता नहीं बल्कि उसके घोषित मूल्यों में निष्ठा रखना समझा जाता है। इस देश का कम्युनिस्ट आंदोलन और प्रगतिशील लेखन जब अपने आरंभिक दौर में था तो लेखन को पार्टी की कार्यनीति के अनुरूप ढालने पर जोर दिया जाता था। अब कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ साथ प्रगतिशील लेखन भी अपने प्रौणावस्था में पहुंच चुका है, इस कारण अब लेखन को पार्टी लाइन पर ले जाने का आग्रह नहीं किया जाता। यूनाइटेड कॉमन आलोचना। प्रगतिवादी आंदोलन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का आचार्य द्विवेदी अपने सैद्धांतिक आग्रह की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित थे और पार्टी की कार्यनीति निर्धारित करने वाले सिद्धांत सूत्रों की आलोचना प्रतिमान के रूप में इसलिए मानने को तैयार नहीं थे कि इससे उन प्रगतिशील लेखकों आलोचकों को इसमें नहीं समाहित किया जा सकता जिन्होंने मार्क्सवादी जीवन दर्शन को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया अथवा कुछ स्वतंत्रता के साथ अपनाया। प्रगतिवादी आलोचक उन लेखकों को प्रतिगामी मानते थे जो अतीत के गौरवगान को रूपायित करने वाले थे। अतीत के गौरवगान को द्विवेदी जी अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानते थे और इसी आधार पर प्रेमचंद की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं। यूनाइटेड कॉमा। उन्होंने अतीत गौरव का पुराना राग नहीं गाया, वे ईमानदारी के साथ अपनी वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करते रहे। हिंदी साहित्य की भूमिका। लेकिन इस आधार पर वे जयशंकर प्रसाद को प्रतिगामी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यूनाइटेड कॉमा प्रसाद ने यद्यपि प्राचीन गौरव का अध्ययन और मनन बहुत अधिक किया था, परंतु उन्होंने अपने समस्त अध्ययन को मनुष्य की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। अध्ययन अध्ययन के लिए नहीं, मनुष्य के उद्धार और उन्नयन के लिए है। यूनाइटेड। इसलिए एक सर्जक इतिहासकार आलोचक की दृष्टि से देखते हुए द्विवेदी जी पाते हैं कि इस प्रकार की फार्मूलाबद्धता के कारण प्रगतिवादी आलोचना में सांप्रदायिक संकड़ता बढ़ती जाएगी, जिसके चलते प्रसाद जी प्रतिगामी होंगे, महादेवी जी अप्रगतिशील बन जाएंगे और राहुल शंकरत्यान को तो को भी जाति बहिष्कृत करना पड़ेगा। यूनाइटेड। हिंदी साहित्य। यदि अतीत गौरवरहस्यवाद अध्यात्मवाद के आधार पर प्रसाद की प्रतिगामी माना जा सकता है तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि निराला का काव्य रहस्यवाद अध्यात्मवाद से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन प्रगतिवादी आलोचना के आरंभिक दौर में ऐसे आलोचकों की कमी नहीं थी जो आलोचना के इस संकीर्णवाद के विरोधी थे और साहित्य को कोरा सिद्धांत प्रचार या मात्र विचार का वाहक मानने को तैयार नहीं थे। सिद्धांत सिंह चौहान का लेख साहित्य की परख जो इस संकीर्णतावाद के विरुद्ध अभियान छेड़ने के कारण अत्यंत विवादास्पद हो उठा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या साहित्य प्रोपेगेंडा है? शीर्षक एक अन्य लेख में सिद्धांत सिंह चौहान ने न केवल प्रगतिवाद की निंदकों का जवाब दिया बल्कि इस तथ्य को भी प्रतिपादित किया कि एनोटेड का साहित्य प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव का अस्त्र है। आचार्य द्विवेदी संकीर्णतावाद से मुक्त ऐसे आलोचकों से भी खबर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने हिंदी साहित्य में स्वीकार किया है कि यूनाइटेड कामा सभी प्रगतिवादी अभी तक सांप्रदायिक नहीं हुए हैं और वे विवेच्य का उचित विश्लेषण करके ही अपना मत देते हैं। विवेच्य के उचित विश्लेषण की क्षमता ही द्विवेदी जी की सृजनात्मक आलोचना का प्रमाण है। यूनाइटेड कामा। इसके चलते उन्होंने हिंदी के आदिकालीन धार्मिक साहित्य का उचित मूल्यांकन करते हुए लिखा है। यूनाइटेड कामा। धार्मिक साहित्य होने का मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसे समझा जाने लगा तो तुलसीदास रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जैसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। यूनाइटेड कॉमा। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी निश्चय ही साहित्य मूल्यांकन के दोहरे मानदंडों का प्रयोग करने वाले उन कतिपय प्रगतिवादी आलोचकों से भिन्न है जो प्रगतिशील रचनाओं के मूल्यांकन में विचारधारा की प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और तुलसी के वर्णाश्रम धर्म विचारधारा की रक्षा के लिए मानवीय करुणा का सहारा देकर उन्हें भौतिकवादी सिद्ध करने पर आमादा दिखाई पड़ते हैं। आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी प्रगतिशील आंदोलन का महान आदर्श उसकी भविष्योन्मुखी उपलब्धियों के प्रति कितने आशान्वित हैं इससे अनेक उनके इस कथन से समझा जा सकता है। प्रगतिशील आंदोलन बहुत मानव उद्देश्य से चालित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक है। भक्ति के महान आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य दृढ़ आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ी थी, जो समाज को नए जीवन दर्शन में संचालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह आंदोलन भी हो सकता है। हिंदी साहित्य। लेकिन इसके लिए भी आवश्यक मानते हैं कि जनता के अंधविश्वासोंहीन मनोवृत्तियों और कुसंस्कारों को दूर कर उनमें आत्मविश्वास और आत्मगौरव का बोध जगाया जाए। जनता को तेजोदीप्त और जागरूक किए बिना जनता राज्य की बात करना द्विवेदी जी की दृष्टि में एक हवाई कल्पना है। वे प्रगतिशील आंदोलन के आदर्श को महान इसलिए मानते हैं कि वह शोषण मुक्त वर्गहीन समाज के निर्माण को महत्व देता है, लेकिन जनता के जागरूक सक्रियता के बिना उस महान लक्ष्य को पाना आसान नहीं है। वे लक्षित करते हैं कि देश की अशिक्षित जनता अभी भी अंधविश्वासों में डूबी है, निरुपाय, निरंतर और निर्वाक है। गंडे ताबीज और लोहबान कोई अमोघ औषधि मानती है, इसलिए गांधी मुकुटधारी कोई समाजवादी उसे निर्वाचन के पहले जनता राज्य का सपना दिखाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ भले सिद्ध कर ले, उससे जनता कोई कल्याण नहीं होने वाला। अपनी कतिपय सीमाओं के बावजूद प्रगतिशील आंदोलन के प्रति द्विवेदी जी की समझ गहरी नहीं है। वे इसकी शक्ति और विपुल संभावनाओं के प्रति आशान्वित और उसकी दुर्बलताओं के प्रति चिंतित तथा उसे अपने साहित्य के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रगतिशील आलोचना को विकसित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।